مختلف جگہوں سے آئے ہوتے ہیں، پھر ساتھ رہنا ہوتا ہے، ہاسٹل میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے چیزیں لینے دینی، تو خودداری جو ہے وہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ خودداری نہیں ان کے اندر، تو یہ خودداری کیسے، خودداری ہے کیا چیز اور یہ پیدا کیسے ہو، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے.
دیکھیں خودداری کے لیے آسان لفظ استعمال کریں تو استغنا کا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. استغنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مستغنی ہونا، یعنی دوسرے کا محتاج نہ ہونا، دوسرے سے اپنی احتیاج کو ختم کر دینا. استغنا کا فائدہ بہت ہوتا ہے. اسی کے لیے دوسرا لفظ زہد بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی زہد بھی بیسیکلی یہ استغنا ہی ہے، اور وہ خودداری کے اندر بھی ہوا ہے. خودداری میں تھوڑا سا دوسرے سے تعلق بن جاتا ہے، زہد کے اندر مال کا مفہوم ذرا زیادہ لیا جاتا ہے. ایک حدیث مبارک ہے، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمائے کہ میں ایسا کیا کروں کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوب بن جاؤں اور لوگوں کی نظر کے اندر بھی محبوب بن جاؤں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے، اور جو دنیا میں ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے. کیونکہ آدمی مال دنیا سے زہد اختیار کرتا ہے، بے رغبتی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، کیونکہ جو دنیا کی محبت سے بچے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. اور جو لوگوں کے ہاتھوں میں موجود شے سے بے رغبتی کرے لوگ اس سے محبت کریں گے. مثال کے طور پہ میرا ایک جاننے والا ہو، اگر میں ہر دوسرے تیسرے دن یا پندرہویں دن میں اسے کوئی نہ کوئی مانگتا ہی رہوں تو اس کے دل میں میری محبت نہیں پیدا ہو سکتی، اور اگر میں اس کے ساتھ رہوں اور میں اسے کچھ بھی نہ لوں، وہ مجھے آفر بھی کرے تو میں کہوں یار بارک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے، حاجت نہیں ہے مجھے اتنی، ضرورت نہیں، میرا ہے گزارا. وہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چار مرتبہ دیکھے گا کہ یار یہ آدمی بہت اچھا ہے. یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا استغنا، اپنی خودداری اور اپنی بے رغبتی ظاہر کرتے ہیں تو لوگ محبت کرتے ہیں. تو خودداری جو ہے یہ استغنا کا نام ہے. اب یہ کیسے حاصل ہو؟ خودداری ختم کیوں ہوتی ہے؟ خودداری کا الٹ کیا ہے؟ یوں کہہ لے کہ مال کی محبت یا اشیاء کی محبت. تو اشیاء کی محبت، مال کی محبت، دنیا کی محبت، حرص، لالچ، طمع، یہ اگر چیزیں کم ہوتی جائیں گی تو خودداری پیدا ہوتی جائے گی. خودداری ختم ہی اس لیے ہوتی ہے جب آدمی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں یا دوسرے کے مال پر نظر رکھنا چھوڑ دیں تو خودداری پیدا ہو جائے گی. اب اس کے حصول کا طریقہ کیا؟ اس کے حصول کا ایک طریقہ وہی ہے کہ اپنی طمع کچھ کم کرے. ہمارا گزارا ہوتا، مثال کے طور پہ کیا ہے، ایک آدمی کا گزارا 15,000 روپے میں ہو جاتا ہے، مثال دے رہا ہوں، لیکن 15,000 میں اس کا گزارا کیا ہوگا؟ اس کا گزارا ہوگا 15,000 کے اندر جو اس کی ضروریات زندگی ہے. اگر اس کے ساتھ وہ یہ کہے گا نا کہ 50,000 کا موبائل ہو، 70,000 کا آئی پیڈ ہو، 80,000 کا لیپ ٹاپ ہو، اور بہترین قسم کے 2,000-3,000 روپے کے میرے جوڑے ہوں، اور چشمہ میرا جو ہے نا وہ 1,500 روپے سے کم نہیں ہونا چاہیے، اب یہ تو 15,000 میں پورا نہیں ہو سکتا. اب اس کے لیے اس کو اپنی خودداری کو جو ہے نا ذرا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اس کی کمائی کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے، تو اب اس کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، یا دوسرے الفاظ میں بولے ترکیب بنانا پڑے گی، خود بنانا پڑے گی یا کسی کو بولنی پڑے گی، تو پھر یہ والی چیزیں شروع ہو جائیں گی. یعنی آپ اپنی ان خواہشات کو ختم کر دیں. آپ کو جو ہے اگر اپنی کمائی سے، اگر آپ کو 30-40 ہزار والا موبائل نہیں مل رہا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو نہ صحیح، 3,000 والے کے اندر سے بھی تو آواز ہی آتی ہے نا، پانی تو نہیں نکلتا، آواز ہی آتی ہے اس میں سے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، کتابیں آپ کو، کتابوں کے لیے بھی خودداری جو ہے نا وہ بیچ دی جاتی ہے کہ آپ کو کتابیں چاہیے، یار کیا کریں، کسی کو بولتے ہیں، کسی کو نہ بولیں، لائبریریاں بہت ہیں، آپ کے دوست ہوں گے ان کے پاس بھی کتابیں ہوں گی، اتنا آپ نے پڑھنا ہی کہاں ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو 1,00,000 روپے کی کتابیں چاہیے. جتنا ہم نے پڑھنا ہوتا ہے اتنا ہم لائبریری کی کتابیں بھی لے سکتے ہیں، اتنا ہم جو ہے وہ کسی دوسرے سے آریتن بھی کتاب لے سکتے ہیں. تو اس طرح کے، یعنی اپنی ضروریات کو کم کرتے جائیں، اپنی خواہشات کو کم کرتے جائیں، خودداری آپ کے اندر پیدا ہوتی جائے گی. پھر یہ ایک اور چیز، اس میں خودداری پیدا کرنے کے لیے مانگنے کی جو مذمت ہے، مانگنے کی مذمت، اس کو ایک مرتبہ اچھی طرح پڑھ لیں کہ مانگنا جو ہے وہ उसकी अहदीस के अंदर बिला जरूरत मांगना तो जैसे एक हराम है ना, और जहां मौदे जिल्लत है वहां पर मांगना हराम है, लेकिन जहां पर मांगना हराम नहीं है लेकिन मजमूम है कि बिला वजह ये आदमी हर एक से, अरे यार मोबाइल देना तो एक कॉल करनी है, कॉल इतनी कोई जरूरी नहीं होती, ये छोटी सी चीज उससे मांग ली, छोटी सी चीज उससे मांग ली, छोटी सी चीज उससे मांग ली, ये इस तरह की चीजें अपनी आदत से खारिज कर दें। और वो जो बुजुर्गाने दीन के वाकियात हैं जिनके अंदर खुददारी और दूसरों से इस्तिग्ना के वाकियात मिलते हैं, जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये खुददारी के हवाले से बयान फरमाया, सवाल के ममानात के ऊपर फरमाया, तो सहाबा इकराम की क्या हालत थी कि किसी का अगर घोड़े पर या ऊंट पर चलते हुए अगर उसका कोई सामान नीचे गिर जाता, कोड़ा भी अगर नीचे गिर जाता, तो वो किसी से बोलता नहीं था उठा के देना, कि ये भी दूसरे से फायदा लेना है, वो खुद नीचे उतरता और कूड़ा उठाकर जाना दोबारा सवार हो जाता। तो अब ये खुददारी है, ये इस्तिग्ना है असल में, ये दूसरे की दूसरे से एहतियाज को खत्म करना है। तो बुजुर्गान दीन के जो वाकयात हैं थोड़ा सा उनका मुताला किया, जैसे जैसे आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया आपने पढ़ा होगा कि आपकी खिदमत में अर्ज किया कि हुजूर अगर वो रियासत नानपारा के जो है वो रईस की शान के अंदर, नवाब की शान के अंदर अगर कसीदा लिख दिया जाए तो बड़ा अच्छा फायदा हो जाएगा, तो आपने क्या किया, वो कमाल हुस्ने हुजूर हैं कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर हैं, यही शमा है कि धुआं नहीं। और आखिरी शेर में फरमाया कि करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। तो ये क्या, ये इस्तिग्ना है असल में, ये खुददारी है कि यहां उसकी शान में कसीदा पढ़ते, तो नवाबों का तरीका ये होता है कि कसीदा शान में पढ़ दिया, जितने बड़े आदमी ने पढ़ा उतना ज्यादा इनाम दे दिया, बहुत बड़े आदमी ने पढ़ दिया तो उसको जनाब को गांव अलाट कर दिया, उसको बहुत बड़ी उसको जागीर ही दे दी, उसको उसको लाखों का इनाम दे दिया। लेकिन आला हज़रत ने साफ फरमा दिया कि मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, मेरा दीन पाराए ना नहीं, रोटी का टुकड़ा मेरा दीन नहीं कि मुझे फलां जो है वो सेठ साहब के यहाँ, फलां नवाब साहब के यहाँ अच्छी रोटी मिल जाएगी, अच्छी बोटी मिल जाएगी, अच्छा खाने को मिल जाएगा, वो जरा थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो करेगा मेरी तरफ, तो फरमाया कि मेरा दीन पारा ना नहीं। तो ये इस तरह की जो खुददारी है ये आदमी के अंदर होनी चाहिए। फिर तलबा जो है, तलबा है या उलमा है, ये आप तलबा है उलमा बन रहे, इनका असल काम ही नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना है। आलिम दीन का असल काम ये नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना। अब अगर खुददारी नहीं होगी ना तो आप बुराई से मना नहीं कर सकते। जिस सेठ से आदमी पैसे ले या कोई मनफात हासिल करे, उसकी किसी बुराई से उसको मना कर सके ऐसा होता नहीं। लाखों में अगर कोई एक होगा तो होगा, वरना ऐसा नहीं होता। एक बुजुर्ग का मैंने वाकया पढ़ा, उनके पास एक बिल्ली थी और उस बिल्ली के जो छिछड़े थे वो एक कसाब से लिया करते थे, गोश्त फरोश से। एक मरतबा उन्होंने देखा कि कसाब ने जैसे मिसाल के तौर पर गोश्त तोलने के अंदर उसने डंडी मारी किसी को देने के अंदर। अब इन बुजुर्गों का ज़हन बना के इसे समझाऊं कि भाई ये तो जायज नहीं है इस तरीके से करना। ये उसके पास गए और उसे जाके कहा कि भाई ये जो तुमने ये किया है ना, ये दुरुस्त नहीं है, इस तरह नहीं करना चाहिए, गलत है ये। उसने आगे से वही जवाब दिया जो फिर पैसे वाले देते कि भाई हमें मुझे मना कर रहे हो, तुम्हारी बिल्ली के छिछड़े तो मेरे पास से जाते हैं। उन्होंने फरमाया कि जनाब पहले मैं घर जाके बिल्ली को ज़बह किया है, उसके बाद ही आपके पास आया हूं। पहले बिल्ली को ज़बह किया तभी आपके पास आया हूं। मुराद ये कि पहले तुम्हारे साथ जो मेरा हुसूले मनफात का ताल्लुक था उसको मैंने खत्म किया, तभी ये जुरत पैदा हुई है कि तुम्हें मना कर रहा हूं। तो ये जो नहयुन अनिल मुनकर, गुनाह से रोकने की, बुराई से मना करने की जो हिम्मत पैदा होती है, वो हिम्मत ही आदमी में तब पैदा होती है जब उसके अंदर खुददारी हो, इस्तिग्ना हो। अगर इस्तिग्ना खुददारी नहीं होगी तो फिर बहरहाल ये नहयुन अनिल मुनकर वाला फरीदा आदमी सरंजाम नहीं दे सकते।
ये तलबा के एतबार से अगर देखा जाए तो समझ ही आता है कि दूसरों से ये सवाल ना करें, एहतियात से ये महफूज रहें। लेकिन मजलिस इंतजामिया जो सहूलियात इनको देती है उसका मुतालबा करना, वो लेना, क्या ये भी खुददारी के मुनाफी है?
हक का मुतालबा करना और होता है, हक का मुतालबा करना ये और है, और जो आदमी का हक नहीं है उसका मुतालबा करना और है। ये दोनों में फर्क है। मिसाल के तौर पर मुझे कॉल करनी है किसी को और मोबाइल है आपके पास, मेरे पास मोबाइल नहीं है। अब मैं आपसे कहूं कि यार मुझे जरा मोबाइल देना, मेरा ये हक नहीं है कि आप मुझे मोबाइल दें। तो ये है जो सवाल करने के अंदर आएगा, जो खुददारी के खिलाफ होगा। लेकिन अगर मैं मिसाल के तौर पे आपका अजीर हूं और मैं आपके पास काम करता हूं, तो तनख्वाह देना तो आपकी जिम्मेदारी है। अब आप तनख्वाह के मौके पर ना दे तो वो तो मैं मुतालबा करूंगा आपसे कि भाई मुझे मेरा मुशारा तो दिया जाए। तो जो आदमी का हक होता है तलबा की, वो चीजें कि जो तलबा का हक है यानी उसूली तौर पर तय है, तलबा को खाना मिलेगा और अच्छा खाना मिलेगा, उनको जो है वो रिहायश उनको सफाई और सुथराई वाली मिलेगी, दीगर जो सहूलियात है वो उनको मिलेंगी। वो अगर नहीं मिलती तो इसके मुतालबे का हक है, इसका मुतालबा वो यकीनन कर सकते हैं, उसकी जो हदूदो क्यूद है उसके अंदर ही। यानी वो नहीं है कि वो हड़ताल और जुलूस निकाल रहे हो कि हमारी सहूलियात, ऐसा नहीं। लेकिन ये है कि बाहर उसका मुतालबा कर सकते हैं कि भाई हमारे कमरे के अंदर ये मसला है। हमारे मिसाल के तौर पर आपके कमरे का वो फैन खराब है, अब फैन खराब है तो आप उसका मुतालबा तो करेंगे कि भाई इसको तो सही करवा दो, ये तो हमारा हक है। तो जो हक है उसका मुतालबा करना, ये उस किसी बुराई के जिम्मन में नहीं आता, इल्ला ये कि मुतालबा करने का अंदाज गलत हो जाए। बाकी वो जो हक नहीं है, जैसे तलबा जो ढेरों ढेर एक दूसरे से मांगते हैं, इसकी उससे चप्पल मांगी तो उससे इमामा मांगा, तो उससे चादर मांगी, तो उससे ये मांगा, तो उससे वो मांगा, उससे पेन मांगा, उससे किताब मांगी, ये हत्तल इम्कान, जब तक आपका गुजारा हो सकता है तब तक आप एक दूसरे से किसी भी किस्म का सवाल ना करें, ना पैसे का, ना सामान का, ना किसी और चीज का।
आपने हक की बात इरशाद फरमाई कि तलबा को खाना हक है, रिहायश हक है। अब एक तालिबे इल्म वो अफोर्ड कर सकता है, खाना खुद खा सकता है, ये चीजें ले सकता है, लेकिन इंतजामिया सहूलत देती है, तो अब भी उसका लेना ये खुददारी के मुनाफी कराएगा?
ये देखिए, एक होती है वो खुददारी के जिसके बरखिलाफ करना जो है ना मायूब समझा जाता है, मायूब समझा जाता है, ये वो तो नहीं है, ये वो नहीं है। जैसे सबील लगी होती है ना पानी की, तो अब एक आदमी खुद अफोर्ड कर सकता है कि वो दुकान से पानी खरीद के पी ले, तब भी सबील से पीना उसके लिए मना नहीं। ठीक, तो कुछ चीजें वो हैं जो खुददारी के इस एतबार से खिलाफ नहीं होती। हाँ, एक खुददारी का बहुत आला मयार कह लें आप कि एक आदमी कहता है कि जब मैं अपने सारे खर्चे अफोर्ड कर सकता हूँ, अपना खाना पीना सारी चीजें कर सकता हूँ, तो मैं ये चंदे की रकम से, सदकात और जक़ात की रकम से मैं खाना नहीं खाता, तो ये अच्छी बात है। इस तरह के दो बुजुर्गों के वाकयात मिलते हैं।
जिमन इसी के जिमन में एक सवाल कि वो आते हैं एक इलाके से, साथ ही एक दूसरे तालिबे इल्म उसी इलाके से आते हैं, वो बाइक वाले हैं, ये वैसे ही हैं, ये कहते हैं कि जब आप जा ही रहे हैं जामिया में तो मुझे भी साथ ले जाएं। तो अब ये सवाल करना, इस तरह जाना, उसका किराया नहीं लग रहा, उसने आना यहीं पर है, एक ही दर्जे में, एक ही जामिया में, तो ये इस तरह के जो मामला, ये कई तलबा ऐसा करते हैं।
देखिए, किराया तो नहीं लग रहा, लेकिन भारत पेट्रोल ज्यादा तो खर्च होता है बाइक के ऊपर। एक आदमी बैठेगा तो पेट्रोल कम खर्च होगा, दो बैठेंगे तो पेट्रोल ज्यादा ही खर्च होगा, तो बाहर उसके ऊपर पैसे तो लगते हैं। अब किसी ने आना कुरंगी से, कुरंगी से यहां तक पहुंचने के अंदर लाजमी बात है सफर बहुत लंबा है, पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा। ये अगर कोई तालिबे इल्म इससे बचना चाहे तो बहुत अच्छा है, उसे बचना चाहिए, और खास तौर पे उस सूरत में कि जब दूसरे को बुरा लगे या वो इसको नापसंद करे। बाजू का क्या होता है, आदमी मना कर नहीं पाता लेकिन उसको पसंद नहीं होता कि वो जो दूसरे को यूं साथ लेकर जाए, वही उसके जेब में अपने पेट्रोल का खर्चा है या कोई और मसला है, वो उसे पसंद नहीं करता लेकिन बेचारा मुरुवत के अंदर मना भी नहीं कर पाता। ऐसी सूरत में बचना बेहतर है, इल्ला ये कि ऐसी आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, इतनी अच्छी दोस्ती है कि पता है कि इसको असलन गिरानी गुजरेगा, बिल्कुल इसको किसी भी तरह इसको जो है ना वो बुरा नहीं लगेगा, तो फिर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहरहाल बचने के अंदर, बहरहाल इसके अंदर बेहतरी है।